यह भी दिलचस्प तथ्य है कि विनय पत्रिका में तुलसी के राम वे राम नहीं है जो अपने भक्तों की आर्त पुकार मात्र सुनकर तत्काल दौड़ते हुए आते हैं और उसका दुख दूर करते हैं। विनय पत्रिका के राम राम वास्ता है, तत्काल या आसानी से तुलसी जैसे भक्त के लिए भी सुलभ नहीं है। उनके आसपास उनके तंत्र से जुड़े लोग हैं, जिनके तामझाम से, जिनके प्रशासकीय तंत्र के सारे विधि विधानों से गुजर कर ही किसी की अरदास मात्र राम तक पहुंच सकती है, अरदास करने वाला नहीं। तुलसी को भी इस समूचे चक्र से गुजरना पड़ता है, अधीनस्थ प्रभुओं की मुसाहिबों की स्तुत करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है, उनके सामने दांत निपोड़ने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, सिफारिश के लिए घिघियाना गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब कहीं उन्हें आशा बनती है कि अब शायद उनकी अर्जी साहेब गरीब नवाज बादशाह राम तक पहुंच जाए। फिर भी कुछ न कुछ शंका उनके मन में बनी ही रहती है। मुगल शासन तंत्र या अधिकार के किसी शासन तंत्र की चालों से भरी भांत पर ये तुलसी जानते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे असरदार सिफारिश किसकी होती है, और इस नाते वे अंततः सीता की ओर उन्मुख होते हैं और उनसे अपने हृदय की शंका तथा इच्छा व्यक्त करते हैं। कबहुं को अम्ब अवसर पाए, कभी अवसर देखकर हे माँ तुम ही उन्हें मेरी सुध दिलाने का प्रयास करना। पराकाष्ठा है विनय पत्रिका में तुलसी के दयनीय और विनय भाव की। अंततः राम तक तुलसी की अर्जी पहुंच ही जाती है और वे उस पर तुलसी के इस विश्वास के साथ अपनी सही कर देते हैं, उसे मंजूर कर लेते हैं कि विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचे हों। विनय पत्रिका के रूप बंध में तुलसी ने दरबारी तंत्र के समूचे विधि विधानों का को पेश करते हुए उसका निर्वाह किया है। विनय पत्रिका में यह जो तुलसी का दैन्य, उनका प्रलाप, उनका अघ निरूपण है, तुलसी जी के शब्दों में अपने अवगुणों को उठाकर दिखाने की प्रवृत्ति है, आत्मभर्सना और अपनी कुकरनी का रोमांचक आख्यान है। इसे तुलसी के भक्तिभाव की पराकाष्ठा मानना चाहिए। यहाँ वे जग की करनी को अपनी करनी मानते हुए, सारे समाज के किए धरे को अपना किया धरा कहते हुए, सारे समाज के प्रतिनिधि की हैसियत से सबके अपराधों को अपने सिर पर लेकर अपने राम से अपनी नहीं समाज की मुक्ति के लिए अरदास करते हैं। बड़ी उदात्त मानसिकता में पहुंचा हुआ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। फिर भी इतना तो स्पष्ट है ही कि तुलसी यहाँ स्वप्न दृष्टा नहीं रह गए हैं, गहरे मोहभंग के शिकार हैं। उनके सपनों को उनके देखे भोगे के यथार्थ का यह कॉन्ट्रास्ट ही है जो विनय पत्रिका को तुलसी की रचनाशीलता में बेजोड़ बनाता है। इस नई मनस्थिति में तुलसी समाज के यथार्थ की ओर उन्मुख हो सके, उसे भांप सके, उसे चित्रित कर सके, यह उनकी रचनात्मक प्रतिभा की सिद्धि है। बड़ी खरोंचे यहाँ तुलसी के मानस पर हैं, बड़े गहरे निशान अंकित किए हैं यहाँ समय ने तुलसी की चेतना पर, बड़ा दबाव है यहाँ कलिकाल का तुलसी के समूचे मनोलोक पर, बड़े अकेले और बड़े असहाय भी हैं यहाँ तुलसी। राम के अपने माने हुए सान्निध्य के बावजूद बड़े अवसादग्रस्त, उदास, हत विश्वास और भयाक्रांत भी हैं यहाँ तुलसी। अपनी नहीं कलिकाल के दुष्प्रभावों से संसार और समाज की मुक्ति को लेकर तुलसी के परिवर्तित मनोलोक का यह अंतरंग साक्षात्कार उनके आत्म और जगदर्शन के कुछ निहायत विशिष्ट आयामों को क्या हमारे सामने नहीं खोलता? उनके बारे में विचार करने और निर्णय निष्कर्षों तक पहुंचने की नई जमीने हमें मुहैया नहीं कराता? इसे बहुत बड़ी कमी कहा जाना चाहिए कि तुलसी पर विचार या बात करते समय प्रायः श्रद्धा और पूजा भाव के अतिरेक के चलते मानस के वृक्ष विनय पत्रिका जैसी तुलसी की अत्यंत प्रगाढ़ और अंतरंग प्रतीत कराने वाली रचना को हाशिए पर ही डाल दिया जाता रहा है। ऐसा ही एक नितान्त मार्मिक और गोस्वामी जी से अंतरंग साक्षात्कार कराने वाली दूसरी छोटी सी 40-42 छंदों की रचना है हनुमान बाहु। अब तक गोस्वामी जी की अक्षय वृद्धत्व की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। वृद्ध होने के साथ साथ वे रोग जर्जर भी हैं। एक ओर वृद्धावस्था, दूसरी ओर रोग से जर्जर शरीर, गोस्वामी जी के कष्टों की कोई था नहीं, दोनों उन्हें बुरी तरह दबोचे हुए हैं। जिस तरह की व्यथा से वे क्लांत होकर चीखते हैं, उनकी चीख और कष्ट से त्राण पाने के लिए अपने आराध्य से उनकी आर्त पुकार इतनी मार्मिक और बेधक है कि हमें भीतर से हिला देती है। हमें ऐसा महसूस होता है मानो ठेठ हमारे घर में ही वृद्धावस्था और दीगर तमाम रोगों से जर्जर हमारा ही कोई पूर्वज या पितामह असहनीय कष्टों से व्यथित होकर उनसे मुक्ति के लिए चीख और चिल्ला रहा हो, प्राणों से ही मुक्ति चाह रहा हो। हृदय विदारक है इस रचना में गोस्वामी जी का भोगमान। उनकी जीवनी से परिचित हम जानते हैं कि वृद्धावस्था में वे प्लेग की गिल्टी के शिकार हुए थे। गठिया तथा अत्यंत क्लेशदायक वात रोग ने उन पर चौथरफा हमला किया था और जो कुछ कमी उनकी यातना में रह गई थी उसे उस बलतोड़ ने पूरी कर दिया जो कदाचित उन्हें सर्वाधिक कष्ट दे रहा था। हनुमान बाहु गोस्वामी जी की इसी दुर्दांत शरीर यातना और उससे मुक्ति की गुहार का दस्तावेज है। शरीर के साथ साथ उनका मन, उनकी चेतना और उनके सारे आस्था विश्वास यहाँ आहत और भूमसात है। इस कृत की विशेषता यह है कि यहाँ बाहु कष्ट से मुक्ति के लिए गोस्वामी जी राम के साथ वरन राम का दो चार बार ही स्मरण कर मुख्यतः राम के अनन्य भक्त और राम के बाद अपने दूसरे आराध्य हनुमान की याद करते हैं, उन्हीं से अरदास करते हैं। कृति का नाम इसी नाते हनुमान बाहुक है। इसी कृत में हनुमान को जितने विशेषणों से युक्त करके गोस्वामी जी ने याद किया है उनकी संख्या विशाल है। वे इसमें सिंधु तरन, सी सोच हरन, रविपाल बरन तन, विशाल भुजाओं वाले कराल, काल के भी काल, निशंक, राक्षसों को बल चूर करने वाले पवन सुत, सुमेर पर्वत जैसे विशाल और स्वर्ण शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, बरजोर, रंजोर, न जाने क्या क्या है। उनकी जो बिरदावली यहाँ दी गई है उसका भी कोई अंत नहीं है। उनका कहना है ऐसे हनुमान की ऐसे विकट मूर्ति जिसके मन में आ बसे उसके पास पाप और दुख स्वप्न में भी नहीं फटक सकते। अपने इसी विश्वास के तहत वे यहाँ हनुमान को जो युवावस्था में उनके सबसे अधिक प्रिय थे याद करते हैं। अभूतपूर्व संकट से घिरे रहने के कारण उतने ही अभूतपूर्व संकट मोचक का स्मरण करते हैं। प्रारंभ के 10-15 चंदों में हनुमान वीरतावली है, उनकी प्रचंडता और वीरता का आख्यान है। तदुपरांत तुलसी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें शंका होती है जैसे उनसे कोई त्रुटि होने के नाते हनुमान उनसे कुछ उदासीन से हो गए हैं। हताश मनस्थित में वे यहाँ तक बोल जाते हैं कि शायद हनुमान अब पहले जैसे नहीं रह गए, बूढ़े होने के नाते उनके पराक्रम में कमी आ गई है। तभी वे उनके इतने कष्टों के बावजूद मौन हैं। बूढ़ भय बलि मेरी बार की हारी परे बहुते नत पाले। इसके उपरांत गोस्वामी जी सीधे उनसे अपने कष्टों का बखान करते हैं। कलिकाल उन्हें जिस तरह त्रिताप से जला रहा है वह तो अलग, बाह पीड़ा तो उन्हें जैसे मारे डाल रही है। हनुमान से वे उनकी चुप्पी और उदासीनता का कारण पूछते हैं। दीन वचन कहने लगते हैं, मुझ जैसे दुर्बल को और सहारा ही कौन है, तुम ही उदासीन हो गए तो कौन मुझे देखेगा। राम के गुलामन को काम तरु राम दूत, मुसे दीन दुबरे को तकिये तिहारिये। कहते हैं मेरी विशाल भुजा रूपी पोखरी में पीड़ा रूपी मगरी उछल उछल कर मुझे बहुत कष्ट दे रही है, अतः पीड़ा रूपी इस मकई का मुंह फाड़ कर इसे मार डालिए। आगे के छंदों में बार बार बाहु पीड़ा की ही बात अलग अलग तरह से कही गई है। एक बिंदु पर पहुँच कर गोस्वामी जी निराश से हो उठते हैं और निराशा की मनस्थिति में अपने कष्टों का कारण अपने पूर्व जन्म में किए धरे को, अपने पापों को मानने लगते हैं। यह असह्य स्थिति है, वे अत्यंत कातर हो उठते हैं, मोह भंग जैसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। भाल की काल की रोष त्रिदोष की है, वेदनत विषम पाप ताप छल छाह की, कर्म न कूट की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाही पापिनी मलिन मन माह की, पह ही सजाय न तू कहत बजाय तो ही, बावरी न हो ही बानी जानी कपि नाह की, आन हनुमान की दोहाई बलवान की, सपथ महावीर की जो रह पीर बाह की। फिर वही शिकवा कि किस संकोच के चलते आप मुझसे परांगमुख हैं, कौन के संकोच तुलसी के सोच भारी है। हनुमान की उदासीनता का कारण भी वे अपने प्रति उनके क्रोध को और कभी हनुमान के आलस्य को मानते हैं। लगता है जैसे हनुमान पर से उनकी आस्था जिगने लगी है। हनुमान अब उन्हें उतने प्रभावशाली नहीं दिखते। हनुमान से उनके मोहभंग की शुरुआत है। थोड़ी बाहु पीर की बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप कोप लोप प्रकट प्रभाव को। एक बार फिर उन्हें अपनी दीनता का बोध होता है, अपने शैशव की दरिद्रता को सोच सोच कर इतने अद्भुत हो उठते हैं कि अब हनुमान को संबोधित न कर सीधे अपने राम को पुकार उठते हैं। श्री रघुवीर निवारी ये पीर रहो दरबार परो लटिलूलो। सारा कष्ट उनके अपने पूर्व कर्मों का भोग है, वह अब यह विचार तुलसी के मन में घनीभूत हो उठता है। पीड़ा इतनी है कि वे हत्येतन हो जाते हैं, कष्ट की पराकाष्ठा में वे जैसे चिल्ला उठते हैं। पांव पीर, पेट पीर, बांह पीर, मुख पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है। देवभूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दबक दमाकन सी दई है। हो तो बिल मोल की बिकानो बलि बारे ही ते, ओट राम नाम की ललाट लिखी लई है। कुंभ जक किंकर बिकल बड़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई है। बाल तोड़ की असह्य पीड़ा से वे कांप कांप उठते हैं, उससे जो मवाद बह बह कर उन्हें तीव्रता और विचलित करता है, वे मानते हैं गोया राजा राम जो उनको का जो नमक उन्होंने खाया है वही इस मवाद के मिस फूट फूट कर जैसे बह रहा है। ताते तन उपेक्षियत घोर बर तोर मिस, फूटी फूटी निकसत है लोन राम राय को। मोह भंग की प्रक्रिया जैसे पूरी हो चुकती है और जो और जैसा बोया था उसी को काट रहा हूँ यह मानकर सब ओर से निराश होकर वे चुप हो जाते हैं। इसी चुप्पी से, इसी मौन से हनुमान बाहु की पद समाप्ति भी होती है। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग दोष गुण दोष मई, बिरच बिरंची सब देखियत दुनिये। माया जीव काल के करप के सुभाय के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिये। तुम तय कहा न हो हाहा सो बुझ ये मोही, हाउ रहो मीन ही बयो सो जान लुनिये। तुम हमें यह बताओ कि तुमसे क्या नहीं हो सकता, तब मैं यह समझ कर कि मैंने जो बोया था उसे ही काट रहा हूँ मैं चुप हो जाऊंगा। और वे चुप हो जाते हैं। तुलसी की लिखी हुई यह आखिरी पंक्ति है जो राम की सर्वशक्तिमानता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए विराम लेती है। इसके बाद तुलसी ने कुछ नहीं लिखा। हनुमान बाहु उनकी अंतिम रचना है, इसके उपरांत वे स्वर्गवासी हो जाते हैं। यहाँ अपने सारे आराध्यों को सावधान करके सुनाया गया है, उनकी शक्ति का पूरा एहसास है तुलसी को, बावजूद इसके वे उन्हें सुनाते हैं और सावधान करते हैं, उनकी सर्वशक्तिमानता पर संदेह भी व्यक्त करते हैं। अपने दैहिक त्रास की पराकाष्ठा के बीच अपने सर्वशक्तिमान आराध्यों की अपने कष्टों और अपने प्रतिवर्ती उदासीनता से उपजा तुलसी का यह मौन और उनकी सामर्थ्य पर उनका प्रश्न चिन्ह कितना व्यंजक और कितना कुछ कह देने वाला है, इसका बस अनुमान ही किया जा सकता है। कितनी त्रासद है उनकी यह अनुभूत। जरूरी है कि मानस की भव्यता और उसके रचनाकार तुलसी की वैसी ही भव्य छव से आक्रांत उनकी महिमा के गायक भक्तजन, सुधि आलोचक विद्वान और पंडित तुलसी के इस परिवर्तित मनोलोक पर भी ध्यान दें। यही नहीं, उनके त्रासद मोहभंग के बीच से उबरने वाले उनकी क्लांत किंतु निहायत मानवीय और अंतरंग छव से भी रूबरू हों। गोस्वामी जी को उनके पूरे पन में पहचानने और पेश करने का कष्ट करें। तुलसी का यह निहायत अंतरंग परिचय क्या हाशिए पर डालने की चीज है। जो कुछ क्षण निखर कर उनकी इस क्लांत मनोभूमि के सामने आया है, क्या गोस्वामी जी की रचनाशीलता में वह एक निर्णायक मोड़ का सूचक नहीं है। गोस्वामी जी क्या यह अपनी पूरी प्रामाणिकता में, पूरे मानवीय रूप में हमारे सामने एकदम निरभ्र, एकदम पारदर्शी बनकर अपने सुख दुख में हमारी सहभागिता के पात्र बनकर हमारे अपने प्रियजनों की भांति नहीं खड़े हैं? क्या वे यहाँ नितांत हमारे नहीं हैं?